नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शबाब अनवर जी। शबाब जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
धन्यवाद आपका शशांक जी, और श्रोताओं को नमस्कार।
FIH हॉकी प्रो लीग में एक के बाद एक जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं। महिला टीम करेलवी मुकाबले में 3-4 से हार गई है, और इस समय पुरुष टीम का मुकाबला चल रहा है जर्मनी से, पिछड़ रही है, ये भी 1-2 से पिछड़ रहे हैं।
हाँ, लेकिन इसमें मौका होता है, चूंकि ये 7 महीने तक चलने वाली लीग होती है, और फिर आपके पास मौका होता है कि 2-2 मैच एक दूसरे से खेल करके आप मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। लेकिन एक पेनल्टी कॉर्नर जो अभी हम लोग देख भी रहे हैं, उसमें काफी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है
जी। अभी 2 में से 1 तो कन्वर्ट किया है, तीसरा ये मिस कर गए हैं। फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ, पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से जारी। महिला टीम करीबी मुकाबले में स्पेन से 3-4 से हारी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है, गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौटी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट सेमीफाइनल के दूसरे दिन मुंबई के साथ मैच में विदर्भ ने बड़ी बढ़त हासिल की। गुजरात के साथ मुकाबले में केरल ने 7 विकेट पर 418 रन बनाए। चेन्नई में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पेरिस ओलंपिक चैंपियन नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। तो शुरुआत हम हॉकी से ही करते हैं। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से हो रहा है। स्कोर अभी तक जो है वो जर्मनी की टीम 2-1 से आगे है, और मुकाबला बेहद करीबी चल रहा है। और आज तो हमने देखा कि गुर्जर ने जो है अभी 1 गोल किया है अब तक, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर की कहानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है उसमें।
जी, इसमें कोशिश तो की जा रही है, और कोच का भी ये कहना है कि पहले से काफी सुधार आ रहा है। देखिए, पेनल्टी कॉर्नर ठीक उसी तरह से जिस तरह से फुटबॉल में कॉर्नर होता है, दोनों का कन्वर्जन रेट बहुत पुअर है भारतीय परिपेक्ष में देखा जाए। पेनल्टी कॉर्नर अगर आप ले लेते हैं और उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो आपने निश्चित रूप से गोल करने का मौका गंवाया है। लेकिन मिडफील्ड में अगर देखें तो काफी अच्छी हॉकी है, काफी तेज हॉकी भारत खेल रहा है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया और आप जानते भी हैं कि ये एक लंबा चरण होता है इस लीग का, 2-2 मौके मिलते हैं, और इसमें फाइनल से पहले कोई नॉकआउट चरण नहीं होता है, बाहर होने का शुरू में कोई खतरा नहीं होता है, तो अंक तालिका में जो सबसे ऊपर पहली टीम होती है वो चैंपियन करार दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम दोनों वर्गों में देख सकते हैं कि भारतीय हॉकी में निश्चित रूप से जो त्रुटियां जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया
जी,
जो हम लोग भी देख भी रहे हैं, उसमें सुधार आएगा
जी। और महिला टीम की बात करें तो इससे पहले एक करीबी मुकाबले में भारतीय महिला टीम को स्पेन के हाथों जो है वो हार का सामना करना पड़ा है 3-4 से। भारत के लिए बलजीत कौर, साक्षी राणा और ऋतुजा ने गोल किए, लेकिन भारतीय टीम 2-1 से आगे थी तीसरे क्वार्टर तक, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने मैच अपने हाथ से खो दिया।
देखिए, वो मोमेंटम बरकरार रखना काफी मुश्किल काम होता है, और उसी में असफल रही टीम। हालांकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद स्पेन को काफी मुश्किल होगी इस मुकाबले में बने रहने के लिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो उनकी जो स्किल और जो गति होती है उनके खेल की, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की।
चलिए,
अब पुरुष वर्ग में हमने जिस तरह से इंग्लैंड और भारत का जो मुकाबला आपने देखा होगा,
बिल्कुल
जो पेस था वो बाद में देखने को वहां भी नहीं मिला दूसरे मैच में।
और पहले का अगर हम रुख करें तो दोनों ने स्पेन के साथ, पुरुष टीम ने स्पेन के साथ और महिला टीम ने इंग्लैंड के साथ जो है वो 2-2 मैच खेले हैं, लेकिन एक ही एक में जीत नसीब हुई है वहां पर भी।
अभी अब देखा जाए तो इस मैच से पहले तक दोनों ही अंक तालिका में 8वें नंबर पर।
चलिए, हॉकी से निकलते हैं, क्रिकेट का रुख करें तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में इस समय जो है मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से हो रहा है, और जो ताजा समाचार है हमारे पास वहां तक गुजरात ने 13 ओवर में 6 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। तो गुजरात की आज अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी बड़ी बिखरी हुई नजर आ रही है, 43 रन पे ही 5 विकेट गंवा दिए थे।
उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, आपने भी देखा होगा कि जिस पर 4 विदेशी बैटरों पर, खिलाड़ियों पर जो दांव लगाया था गुजरात ने, वो बहुत जल्दी निकल गए, चूंकि टॉप ऑर्डर में वो थी चारों। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मनोवैज्ञानिक दबाव शुरू होने से पहले ही मुकाबले था, क्योंकि 4-0 से आगे अगर देखा जाए गुजरात के खिलाफ WPL में मुंबई, 4 मुकाबले इससे पहले हुए थे, चारों मुंबई ने जीते, और ये मुकाबला भी लग रहा है कि मुंबई के पक्ष में ही जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो ऑक्शन हुआ था, आपको भी याद होगा शशांक जी, जिन 4 विदेशी खिलाड़ियों पर दांव लगाया था गुजरात ने, वो उनके काम नहीं आ रहा। और एक मरतबा फिर ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें कुछ अगले वर्ष से तब्दीली की जाए कि कुछ जो हमारे अपने खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा मौका मिले।
ओके, अभी तक जो हम देख रहे हैं कप्तान एशली गार्डनर पे ही केवल केंद्रित दिख रही है गुजरात की टीम। पहला मैच उन्होंने करीब तक ले गई, दूसरा जिताया, और उसके अलावा उनको सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल सही।
चलिए, और इसके अगर पहले देखें कल क्या हुआ, तो कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया।
वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्रतियोगिता में एक और प्रचंड जीत दर्ज की है। कप्तान स्मृति मंधाना की शानदार पारी और गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन के सहारे बेंगलुरु ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। स्मृति मंधाना के महज 47 गेंदों में 81 रन और डेनियल वॉइट के 42 रन की बदौलत बेंगलुरु ने 142 रन का लक्ष्य 22 गेंद रहते हासिल कर लिया। स्मृति ने पारी के दौरान 10 चौके और 3 छक्के लगाए। इससे पहले प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह और जॉर्जिया वेरहम के 3-3 विकेट तथा एकता बिष्ट और किम गार्थ के 2-2 विकेट की बदौलत दिल्ली की टीम 141 रन पर सिमट गई थी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
जी, तो अगर कल के मैच की बात करें तो फॉर्म में दिख रही है बेंगलुरु की टीम, जिस हिसाब से वो खेल रही है बहुत कंबाइंड और बड़ी अच्छी संतुलित टीम नजर आ रही है।
चैंपियन टीम है और कप्तान काफी अच्छे से आगे बढ़ करके टीम को लीड कर रही है टीम को, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अगर आप पिछली विजेता हैं तो उसका फर्क तो पड़ ही जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जिस मोमेंटम के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम उतरी है
जी।
तो पुरुष टीम जो है जो आईपीएल में उतरती है, और आप जानते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो उनको काफी सीख लेनी चाहिए इस महिला टीम से।
बिल्कुल बिल्कुल, कोहली एंड कंपनी को काफी सीख की जरूरत है। हम जरा रुक करते हैं घरेलू क्रिकेट का। अहमदाबाद में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में गुजरात के साथ केरल ने दूसरे दिन 7 विकेट पर 418 रन बना लिए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 149 रन की पारी खेली है, अभी तक नाबाद हैं। सचिन बेबी ने 59 और निराज ने 52 रन की पारी खेली है। स्लो बैटिंग कर रही है इधर केरल की टीम, लेकिन बड़ी सधी हुई पारी चल रही है उनकी कहीं ना कहीं।
यहाँ देखिए फाइनल जो होता है, सेमीफाइनल और फाइनल जो मुकाबला 5 दिनों का होता है, तो इसमें काफी समय आपके पास रहता है कि आप अच्छे से बल्लेबाजी करें। एक तरह का ये रणजी ट्रॉफी क्या है, भारत के मतलब नेशनल टेस्ट मैच है एक तरह से अगर देखा जाए डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो उसी अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है और होनी भी चाहिए। और अजहरुद्दीन जिनके बारे में आपने बात की, उन्होंने पहले मैच से पहले भी मैच में अच्छी पारी खेली थी, तो एक ऐसे समय में उन्होंने ये शतक लगाया है जिससे उनकी टीम को तो फायदा हो रहा है और वो भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक्सपोजर यहां से अगर आपको मिलता है, हालांकि चयन का कोई जरूरी नहीं है कि पैमाना सिर्फ रणजी ट्रॉफी अब है, लेकिन फिर भी रणजी ट्रॉफी एक मेन ऐसा इवेंट है जिससे आप कम से कम रेड बॉल में तो आगे बढ़ ही सकते हैं।
बिल्कुल, इधर गुजरात फेवरेट मानी जा रही थी, उधर मुंबई की टीम दूसरे सेमीफाइनल में फेवरेट मांगी थी, लेकिन दोनों टीमें समय अंडरडॉग के आगे कमजोर नजर आ रही हैं। मुंबई के साथ दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ ने बड़ी बढ़त हासिल करनी, उसने पहली पारी में 3 विकेट पर विदर्भ की पहली पारी में जो है वो 383 रन के जवाब में मुंबई की टीम पहली पारी में 188 रन बनाकर 7 विकेट पे 188 रन बनाकर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है।
और इससे पहले भी जो और भी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए हैं बीसीसीआई के, उसमें भी देखिए मुंबई की हालत अच्छी नहीं थी
जी।
तो अच्छा सत्र मुंबई के लिए तो नहीं है अभी।
बिल्कुल, 195 रन से पीछे चल रही है। स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे खाता नहीं खोल पाए। हाँ, लेकिन शिवम दुबे जो हैं उन्होंने गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो 5 विकेट उन्होंने लिए हुए
जी। बिल्कुल जी, तो ऑलराउंडर हैं, तो हालांकि उनका मुख्य काम रन बनाना है
जी। चलिए, और हम अब रुक कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। कल कराची में पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे।
आठ साल बाद हो रही इस प्रतियोगिता में अगले 3 सप्ताह के दौरान 8 देशों के बीच रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। मेजबान पाकिस्तान में सभी की निगाहें कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा पर रहेंगी। टीम को सईम अयूब के चोटिल होकर प्रतियोगिता से बाहर होने से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उधर बल्लेबाजी और स्पिन में मजबूत नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी। कप्तान मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल पर सबकी निगाहें होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और पहली बार टूर्नामेंट में खेल रही अफगानिस्तान की टीम शामिल है। भारतीय टीम अपना पहला मैच बृहस्पतिवार को दुबई में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान के साथ और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। सेमीफाइनल मुकाबले 4 और 5 मार्च को और फाइनल 9 मार्च को होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
तो कप्तान मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वो टीम को मोटिवेशनल वाले स्पीच दे रहे हैं और मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है?
देखिए, थोड़ा सा तो रहता ही है आपको, अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं तो आपको याद होगा 2017 में पाकिस्तानी विजेता था, उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं है जी। तो थोड़ा सा तो अपर हैंड रहता है, लेकिन ये मुकाबला ऐसा है कि आपको 3 शुरू के मैच खेलने होते हैं, उसमें से अगर पहला मैच भी अगर आप गंवा देते हैं एक मैच, तो फिर बट किंतु परंतु वाली स्थिति हो जाती है। तो ये आसान नहीं है, शुरुआत है, देखना है कि इससे पहले ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान ने वहां पर खेली है, तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध कोई खास प्रदर्शन देखने को मिला नहीं। अब कल मुकाबला जब शुरू होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का प्रदर्शन करता है, लेकिन भारतीय जो श्रोताओं की निगाहें तो अब
अपने मैच पर
होंगी, जाहिर
सी बात है। वहां पर भारत के लिहाज से अगर बात करें तो शमी जो है वो जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है?
देखिए, कमी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना जो अपनी जो राय है या फिर मैं जो सोच रहा हूं ये है कि शायद वहां पर हम लोग सिराज को मिस कर रहे हैं होंगे, चूंकि जब बुमराह नहीं है, अब बुमराह एक मैच विनर बॉलर है हमारे, जब वो नहीं है तो फिर उस तरह का एक बॉलर होना चाहिए था। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से ODI वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की थी, अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तब तो अच्छी बात है, वरना थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बॉलिंग में, और जिस तरह से स्पिन अटैक को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, तो दुबई का विकेट जो है बहुत मददगार नहीं है स्पिनर्स के अब तक का जो आकलन रहा है
जी।
तो मुकाबला दिलचस्प होगा, और बल्लेबाजी में जो भारत की गहराई है बस वही मेन है देखा जाए तो।
चलिए, हम इसी के सहारे सोचते हैं।
और ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास काफी,
बिल्कुल काफी ऑलराउंडर्स हैं। हम क्रिकेट से जरा बाहर निकले, पैरा एथलेटिक्स का रुख करें तो चेन्नई में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की आज शुरुआत हुई है, और पेरिस पैरालंपिक चैंपियन नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के नवदीप ने चैंपियनशिप के पहले दिन 49.493 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो पैरालंपिक चैंपियन, शुरुआत भी चैंपियन के लिहाज से की उन्होंने।
जी हाँ, बिल्कुल, हालांकि ओलंपिक से थोड़ा सा खराब प्रदर्शन उनका रहा है, आपको याद होगा कि पैरालंपिक में 47.32 मीटर उन्होंने फेंका था और स्वर्ण पदक जीता था। और जिस कैटेगरी में वो आते हैं F41 का मतलब होता है कि शॉर्ट स्ट्रक्चर, यानी पूरी तरह से शरीर की बनावट हो नहीं पाई, आप नहीं देखने में भी नवदीप को देखा होगा, तो उसमें जेवलिन फेंकना इतनी दूरी तक ये आसान काम नहीं कि आप ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीते और फिर नेशनल प्रतियोगिता में, तो एक बड़ी बात है उनके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि लंबाई इसके लिए होना जरूरी है और वो शॉर्ट स्ट्रक्चर के एथलीट है,
और ये बड़ा 1500 खिलाड़ियों का एक टूर्नामेंट है ये। लेकिन इसके बाद भी एक प्रतियोगिता आने वाली है, 11 से 13 मार्च तक नई दिल्ली में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का आयोजन होगा, तो खिलाड़ी उससे भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है अपने देश में, निश्चित रूप से उनका हौसला काफी बड़ा। आज से 10 साल पहले पैरा एथलीट्स के बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मैं हमेशा जब भी यहाँ स्पोर्ट्स स्कैन में आया या प्रसार भारतीय किसी कार्यक्रम में, सबसे ज्यादा अगर पैरा गेम्स को प्रमोट किसी ने किया तो निश्चित रूप से प्रसार भारती ने किया है
जी। और बैडमिंटन की बात करें तो वहां पे विश्व महासंघ की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार पीवी सिंधु सिंगल्स विश्व रैंकिंग में 2 स्थान खिसककर 15वें पायदान पर पहुंच गई हैं। मालविका बसोड़ जो है वो 28वें स्थान पर हैं। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो नक्ष सेन 10वें नंबर पे बने हुए हैं, एचएस प्रणय 31वें स्थान पर हैं। और रैंकिंग के लिहाज से भी और बैडमिंटन में अभी हमारे पास कोई अच्छी न्यूज बहुत आ नहीं रही है
जी। नहीं
जी, और रोलर स्केटिंग की भी एक खबर हमारे पास है। भारतीय रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल टीम जो है वो श्रीलंका से लौटने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की थी। 2 मुकाबले चल रहे हैं इस समय। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला जर्मनी से जारी है, भारतीय टीम 1-2 से पीछे चल रही है। इसके अलावा जो एक और मैच चल रहा है वो चल रहा है WFPL का, और वहां से जो हमारे पास खबर है, लेटेस्ट अपडेट है, गुजरात की टीम ने 15 ओवर में 7 विकेट पे 88 रन बना लिए हैं। शवाब जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
आपका भी।
श्रोताओं, फिलहाल शशांक और पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।